अगर हम एक पत्थरों की ऐसी विशाल दीवार के बारे में सोचें जिस पर साफ और थोड़े कड़े शब्दों में लिखा हो कि इसके आगे आने वाले किसी भी गैर व्यक्ति की मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा, तो ये कैसा लगेगा?
हाँ, मतलब ये सुनने में सीधे तौर पर किसी आधुनिक मिलिट्री बेस जैसा लगता है,
या फिर किसी टॉप सीक्रेट फैसिलिटी की वार्निंग।
बिल्कुल, पर हैरानी की बात यह है कि ये किसी मिलिट्री बेस की चेतावनी नहीं है। ये दृश्य दरअसल प्राचीन जेरूसलम के एक अत्यंत पवित्र मंदिर का है।
पवित्र मंदिर और ऐसी मौत की चेतावनी, थोड़ा अजीब लगता है सुनने में।
ना, और एक ऐसी जगह जहां अचानक से माहौल पूरी तरह बदल जाता है। एक पूरी की पूरी क्रोधित भीड़ किसी एक आदमी की जान लेने पर आमादा है। चारों तरफ धूल उड़ रही है, लोग चिल्ला रहे हैं और अपने कपड़े फाड़ रहे हैं।
एक पूरा रायट सिचुएशन। हाँ, एकदम। तो आज की इस घेरी छाबीन में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं आपकी होस्ट हूँ और मेरे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। आज हम डॉक्टर क्रेग केनर के एक्ट्स 21 और 22 पर दिए गए लेक्चर के जरिए इस भयंकर ऐतिहासिक दंगे की गहराइयों में उतरेंगे।
हेलो सभी को, मैं इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, क्योंकि ये स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे प्राचीन काल में झूठी अफवाहों और जातीय भेदभाव ने एक आम दिन को मौत के हंगामे में बदल दिया था।
सही बात है, और हमारा उद्देश्य यही समझना है कि इस कहानी के मुख्य व्यक्ति यानी पॉल ने इन जानलेवा कठिनाइयों का सामना कैसे किया और विरोध के बीच अपनी छवि कैसे बनाए रखी।
बिल्कुल, और अगर इस घटना को एक बड़े ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सिर्फ एक आम दंगे की कहानी नहीं रह जाती, ये दो अलग अलग संस्कृतियों के टकराव की कहानी है। अफवाहों के खतरनाक असर की और उस तनाव की जो तब पैदा होता है जब पुरानी परंपराओं में नए बदलाव आते हैं। स्रोत में दी गई जानकारी के आधार पर हम पूरी तरह तटस्थ रहेंगे, लेकिन इसका विश्लेषण करते हुए ये देखना हैरानकुन है कि सदियों बाद भी मानव स्वभाव,
जैसे कि भीड़ की मानसिकता,
हाँ भीड़ की मानसिकता, डर और अफवाहों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना, ये सब लगभग एक जैसा ही है आज भी।
डेफिनेटली। तो उस मंदिर के बड़े हंगामे तक पहुंचने से पहले मुझे लगता है उस सफर की बात करना बहुत जरूरी है जिसने इस पूरे तूफान की नींव रखी थी।
हाँ, यात्रा का शुरुआती हिस्सा।
राइट, सफर की शुरुआत में ही आने वाले खतरे के कई संकेत मिलने लगे थे। स्रोत में पॉल की यात्रा मार्ग का काफी विस्तार से जिक्र है, जैसे कोस रोड्स, पतारा, टायर, पुटोलमाइज और आखिर में सेजेरिया।
प्राचीन समाज में ऐसी लंबी समुद्री यात्राओं के किस्से वैसे भी बहुत रोचक माने जाते थे।
एक तरफ रोमन सेना थी और दूसरी तरफ पॉल का अपना नेटवर्क।
ये अंतर समझना सच में बहुत जरूरी है। स्रोत बताता है कि उस वक्त रोमन एम्पायर में सेना का पूरा दबदबा था।
अच्छा।
उदाहरण के लिए, जब सेना का कोई अधिकारी या सेंचुरियन जूलियस सफर करता था तो रोमन कानून के तहत उसको स्थानीय लोगों से जबरदस्ती खाना, राशन और रुकने की जगह लेने का अधिकार था। इसे एंग्रिया कहा जाता था।
वेट, मतलब लोगों को न चाहते हुए भी उन्हें होस्ट करना पड़ता था।
हाँ बिल्कुल, आम लोग इससे बहुत परेशान थे, फोर्स्ड हॉस्पिटैलिटी कह सकते हैं इसको। लेकिन पॉल के सफर में एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखती है।
वो कैसे?
वो जहां भी जाता है उसे ईसाई समुदाय से, जिसमें यहूदी और गैर यहूदी जिनको जेंटाइल्स कहते हैं दोनों शामिल थे, उनसे बेहतरीन मेहमान नवाजी मिलती है।
अरे वाह,
बिना किसी जबरदस्ती के। एग्जैक्टली, ये मेहमान नवाजी सिर्फ खाना खिलाने तक सीमित नहीं थी, ये एक नए सामाजिक बदलाव का प्रतीक थी जहां लोग खुशी खुशी एक दूसरे का ध्यान रख रहे थे।
पर जहां एक तरफ ऐसी मेहमान नवाजी मिल रही थी, वहीं आगे आने वाले खतरे की घंटियां भी बहुत तेज बज रही थीं।
मुझे स्रोत का वो हिस्सा याद आ रहा है जब वो सेसरिया में फिलिप के घर रुकते हैं।
हाँ, वहां दो बड़े संकेत मिलते हैं उन्हें।
सही का, पहला फिलिप की चार बेटियां जो भविष्यवाणी करती थी, और दूसरा एगबस नाम का एक भविष्यवक्ता।
और एगबस का तरीका तो एकदम ही नाटकीय था।
बहुत नाटकीय। वो पॉल की कमरबंद यानी बेल्ट लेता है, उससे खुद के हाथ और पैर बांधता है और चेतावनी देता है कि जेरूशलेम में जिसकी ये बेल्ट है उसका बिल्कुल यही हाल होने वाला है।
उसने प्रैक्टिकली एक्ट आउट करके दिखाया। राइट, अगर इसको थोड़ा आसान शब्दों में समझें तो ये कुछ वैसा ही है जैसे आपकी गाड़ी का GPS बार बार लाल रंग में रूट ब्लॉक्ड या फेटल डेंजर अहेड दिखा रहा हो, सभी अलार्म्स बज रहे हो, पर ड्राइवर फिर भी स्टेयरिंग व्हील पकड़े उसी रास्ते पर एक्सेलरेटर दबा रहा हो।
सही एग्जांपल है।
पर मेरा सवाल ये है कि जब उनके अपने दोस्त और यहां तक कि डिवाइन संकेत उन्हें वहां जाने से मना कर रहे थे, तो पॉल ने वहां जाने की जिद आखिर क्यों पकड़ी? क्या ये एक तरह का ब्लाइंड फेनेटिसिज्म नहीं था?
देखिए, ब्लाइंड फेनेटिसिज्म का आरोप लगना आसान है, पर स्रोत इसका जवाब लिमिटेड रिवेलेशन या आधी जानकारी के कॉन्सेप्ट से देता है, जो इस फेनेटिसिज्म वाली बात को पूरी तरह काटता है।
आधी जानकारी मतलब उन्हें पूरा सच नहीं पता था।
इसे समझने के लिए हमें जॉन द बैप्टिस्ट या एलिशा और एलाइजा की उन पुरानी कहानियों को देखना होगा, जहां भविष्यवक्ताओं को सिर्फ आने वाली घटना का एक छोटा हिस्सा ही दिखता था,
जैसे किसी बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक टुकड़ा।
बिल्कुल सही। अगैबिस और बाकी दोस्तों ने आने वाले खतरे और कैद को देखा। उनकी जानकारी अपनी जगह बिल्कुल सटीक थी। डर और दोस्ती के चलते उन्होंने नेचुरली पॉल को रोकना चाहा, लेकिन पॉल के पास अपने मकसद का पूरा अनुमान था। वो जानता था कि ये मुसीबत या कैद उसके रास्ते का अंत नहीं है।
अच्छा, तो उसे पता था कि आगे क्या होगा?
हाँ, बल्कि रोम तक पहुंचने और वहां अपना संदेश देने के रास्ते का ये एक जरूरी हिस्सा है। उसने उस खतरे को देखकर डरने के बजाय उसे स्वीकार करने का फैसला किया।
यानी मकसद डर से कहीं बड़ा था और खतरा उस मकसद का हिस्सा था।
सही पकड़ा।
जब पॉल आखिरकार इन तमाम चेतावनियों को अनदेखा करके जेरूसलम पहुंची जाता है, तब वहां उसका सामना हथियारों से नहीं बल्कि झूठी अफवाहों की एक भयंकर आग से होता है।
अफवाहें जो पहले से वहां फैल चुकी थी।
हाँ, माँ जेम्स और हजारों यहूदी विश्वासी जो वहां के कानून या तौरा के प्रति पूरी तरह निष्ठावान थे, वो उनका स्वागत तो करते हैं, पर स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण थी,
क्योंकि अफवाह ये फैल चुकी थी कि पॉल बाहर रहने वाले यानी डायस्पोरा यहूदियों को अपने तौर तरीके और कानून छोड़ने को कह रहा है,
पर अपने बच्चों का खतना या सर्कमसिजन ना करने को कह रहा है, जबकि असलियत तो कुछ और ही थी।
असलियत ये थी कि पॉल सिर्फ दूसरों पर अपने कस्टम जबरदस्ती थोपने के खिलाफ था। स्रोत इसको समझाने के लिए एक आधुनिक और बहुत सटीक उदाहरण देता है।
हाँ, जैसे मिशनरी वाला एग्जाम्पल।
राइट, जैसे कोई मिशनरी अगर किसी दूसरे देश में जाता है तो वो वहां के लोगों पर अपने देश के तौर तरीके या पहनावा नहीं थोपता, बल्कि उनके समाज में घुल मिलकर उन्हीं की भाषा में बात करता है।
अडेप्ट करता है खुद को।
पॉल का भी यही मानना था। गैर यहूदियों के लिए उसने कानून को अनिवार्य नहीं माना, पर इन अफवाहों को चुप कराने के लिए जेम्स एक सलाह देता है।
वो सलाह जो बाद में भारी पड़ती है।
हाँ, वो पॉल से कहता है कि मंदिर में जाकर नाजराइट वाव यानी मन्नत लेने वाले चार लोगों का खर्चा उठाए, ताकि सबको दिख सके कि वो खुद परंपराओं का आदर करता है।
यहाँ थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा, क्योंकि नाजराइट वाव कोई छोटी मोटी मन्नत तो थी नहीं। इसमें लंबा समय लगता था, बाल बढ़ाने होते थे, और आखिर में मंदिर में जाके बाल मुंडवाने के बाद जानवरों की बलि और चढ़ावे का भारी खर्चा उठाना पड़ता था।
सही बात है, चार लोगों का खर्चा उठाना किसी भी आम इंसान के लिए आर्थिक रूप से कमर तोड़ने वाला काम था।
पर मेरी यहाँ एक आलोचना है इस पॉइंट पर।
बोलिए।
एक तरफ वही पॉल गैर यहूदियों को कानून और नियमों से आजादी के बात सिखाता है, और दूसरी तरफ सिर्फ भीड़ को शांत करने के लिए मंदिर में जाकर इतने महंगे रिचुअल्स का खर्चा उठा रहा है। तो क्या असलियत में ये सिर्फ भीड़ को शांत करने का एक डेस्परेट तरीका नहीं था? सीधे तौर पर दोगलापन या हिपोक्रेसी नहीं लगती है?
देखिए, हिपोक्रेसी का आरोप लगना इस सिचुएशन में बहुत स्वाभाविक है, लेकिन स्रोत इसे दोगलापन नहीं बल्कि कल्चरल कंटेक्सचुअलाइजेशन कहता है।
कल्चरल कंटेक्सचुअलाइजेशन, ये कैसे?
इसे फर्स्ट कोरिंथियंस 9 के हवाले से समझाया गया है, जहां पॉल खुद कहता है कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन गया ताकि उन्हें जीत सकूं।
ओ, अच्छा।
पॉल का ये दृष्टिकोण था कि अपने लोगों के बीच उनके तौर तरीके मानने में कोई बुराई या पाप नहीं है। उसका मुख्य उद्देश्य आपसी मिलमिलाप या कंसिलिएशन था।
मतलब वो उन्हें एलिनेट नहीं करना चाहता था।
एग्जैक्टली। इन रिचुअल्स का उद्देश्य उसके लिए मुक्ति पाना नहीं था, बल्कि सामाजिक सद्भावना यानी सोशल हार्मनी बनाए रखना था। वो ये दिखाना चाहता था कि परंपराएं अपने आप में बुरी नहीं है।
बस उन्हें गैर यहूदियों पर अनिवार्य शर्त के रूप में थोपना गलत है।
सही, ये उसकी फ्लेक्सिबिलिटी थी ना, कि कॉम्प्रोमाइज या दोगलापन।
तो ये कल्चरल कंटेक्सचुअलाइजेशन की कोशिश एक ब्रिज बनाने के लिए थी, पर सबसे बड़ी आयरनी तो यही है ना कि ब्रिज बनाने की यही कोशिश उस धमाके का ट्रिगर बन गई।
सबसे बड़ा धमाका?
हाँ, जब पॉल ने उस कोशिश के तहत मंदिर में कदम रखा, पुरानी दुश्मनी उस आंगन में आ पहुंची। स्रोत बताता है कि एशिया यानी एफएसएस से आए कुछ यहूदियों ने पॉल को ट्रॉफिमस के साथ शहर में घूमते हुए देखा था।
और ट्रॉफिमस एक एफिशिएंट जेंटाइल था, यानी गैर यहूदी।
बिल्कुल। तो जब उन्होंने पॉल को अकेले मंदिर में देखा तो उन्होंने बिना किसी सबूत की ये मान लिया कि पॉल उस जेंटाइल को मंदिर के उस खसूसी हिस्से में ले आया है जहां उनका आना सख्त मना था।
और उस मना होने का मतलब सिर्फ एक नियम तोड़ना नहीं था। श्रोत विस्तार से मंदिर की बनावट को समझाता है यहाँ।
मंदिर की बनावट कैसी थी उस वक्त?
मंदिर के आंगन अलग अलग हिस्सों में बंटते थे। सबसे पहले कोर्ट ऑफ द जेंटाइल्स, फिर कोर्ट ऑफ वेमेन और आगे बढ़ते हुए मुख्य पवित्र हिस्सा। इसके बीच में एक भारी पत्थरों की दीवार थी जिसे शोरेक कहा जाता था।
वही दीवार जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था।
हाँ, वही। इस दीवार पर बाकायदा ग्रीक और लैटिन में पत्थर पर उकेरी हुई चेतावनियां थी कि अगर कोई गैर यहूदी इस दीवार को पार करता है तो उसकी मौत के लिए वही खुद जिम्मेदार होगा।
अरे बाप रे।
रोम ने भी इस नियम का इतना आदर किया था कि उन्होंने इसके उल्लंघन पर मौत की सजा को कानूनी मान्यता दी थी।
तो भीड़ ने सिर्फ ट्रॉफिमस को शहर में देखा और एक्स्ट्रापोलेट करके पूरी झूठी कहानी बना ली कि वो मंदिर के अंदर आ गया है।
एग्जैक्टली।
ये तो वैसा ही हो गया जैसे आज के जमाने में किसी बहुत ही सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फेंस लगी हो, जहां इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गलती से वहां पहुंचे हैं या जानबूझकर।
छुएंगे तो मौत पक्की है। बिल्कुल सही उपमा है।
लोग सिर्फ थोड़ी सी जानकारी के आधार पर किसी चीज को एग्जैजरेट कर लेते हैं और भीड़ पागल हो जाती है। पर मेरा एक सवाल है यहाँ पर। उस जमाने में अलग अलग जातियों और समुदायों का एक साथ आना आखिर इतना खतरनाक क्यों था कि लोग जान लेने पर उतारू हो गए?
इसे समझनी थी उस वक्त के ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन को देखना होगा। स्रोत इसके लिए इफिशियंस 2 का जिक्र करता है जो पॉल ने बाद में रोमन कस्टडी में रहते हुए लिखा था। उस पत्थर की दीवार को उसने प्रतीकात्मक रूप से डिवाइडिंग वॉल ऑफ हॉस्टिलिटी या भेदभाव की दीवार कहा था।
भेदभाव की दीवार।
हाँ, उस समय राष्ट्रवाद और जातीय भेदभाव अपने चरम पर थे। रोमन साम्राज्य के जुल्म ने स्थानीय लोगों में एक ऐसी अति सुरक्षा की भावना पैदा कर दी थी कि वो अपनी पहचान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे।
डिफेंसिवनेस आ गई थी उनमें।
बिल्कुल। ऐसे माहौल में पॉल का पैगाम बहुत ही बागी या रिबेलियस था। पॉल कह रहा था कि अगर आप अलग अलग जातीय रेखाओं के पार जाकर एक दूसरे को नहीं अपना सकते तो आपका ईश्वर पर विश्वास अधूरा है।
ये तो उस वक्त के विभाजित समाज के लिए हजम करना बहुत मुश्किल रहा होगा।
असंभव था स्वीकार करना।
और इस असंभावना ने ही उस भीड़ को भड़काया जहां से हमारी आज की कहानी शुरू हुई थी। दरअसल जब भीड़ पॉल को मारने वाली होती है तब एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट आता है जो किसी हॉलीवुड एक्शन थ्रिलर फिल्म के ट्विस्ट को भी पीछे छोड़ दे।
एकदम सिनेमैटिक एंट्री होती है यहाँ।
हाँ, मंदिर के ठीक ऊपर एक रोमन किला था जिसे फोर्ट्रेस एंटोनिया कहा जाता था। वहां से रोमन सैनिक मंदिर की चौड़ी सीढ़ियों से दौड़ते हुए आते हैं और पॉल को भीड़ के हाथों टुकड़े टुकड़े होने से बचा लेते हैं।
पर कहानी में जो ट्विस्ट है वो ये कि रोमन ट्रिब्यून जिसका नाम क्लॉडियस लाइसियस था उसकी मदद किसी इंसानी हमदर्दी के चलते नहीं करता।
तो फिर क्यों करता है?
उसको लगता है कि उसके हाथ एक बहुत बड़ा आतंकवादी लग गया है।
स्रोत इस गलतफहमी को बहुत अच्छे से खोलता है। ट्रिब्यून को दरअसल लगा कि पॉल कोई इजिप्शियन फॉल्स प्रॉफिट है।
इजिप्शियन फॉल्स प्रॉफिट? ये कौन था? कुछ समय पहले एक मिस्री नेता ने हजारों लोगों को भड़काकर बगावत की थी और फिर फरार हो गया था। ट्रिब्यून को यह भी लगा कि शायद ये पॉल सिकरी का नेता है।
वेट, सुकारी, वो जो डैगर्स लेके घूमते थे?
हाँ, वही। सिकारी उस वक्त के सबसे खतरनाक असैसिन्स होते थे। वो भीड़भाड़ वाले इलाकों में आते थे, अपने लंबे कोट के नीचे छुरा या डैगर छिपा कर लाते थे, राजनीतिक विरोधियों को छुरा घूमते थे
भीड़ में।
हाँ, और फिर पकड़े जाने से बचने के लिए भीड़ में ही शामिल होकर सबसे तेज चिल्लाने और रोने का नाटक करते थे ताकि किसी को शक ना हो।
ओह माय गॉड, क्या बात कर रहे हैं।
बिल्कुल। तो ट्रिब्यून को लगा कि उसने उस फरारी नेता को पकड़ लिया है जिससे उसका अपना प्रमोशन पक्का हो जाएगा।
अरे वाह, ट्रिब्यून की उम्मीदें तो आसमान पर थी। पर जब पॉल अपना मुंह खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं।
पूरी तरह होश उड़ जाते हैं।
स्रोत बताता है कि जब पॉल बोलता है तो वो परफेक्ट ग्रीक बोलता है और वो भी एक एजुकेटेड एजियन एक्सेंट में। ट्रिब्यून यह सुनकर वैसे ही हैरान रह जाता है जैसे अगर कोई किसी अनजान इलाके में जाए और वहां का कोई आम सा दिखने वाला शख्स अचानक से क्लासिकल शेक्सपियरियन इंग्लिश बोलना शुरू करते।
सही कंपैरिजन है। फिर वही पॉल उस क्रोधित भीड़ की तरफ मुड़ता है और उनकी स्थानीय भाषा यानी अरामिक में बोलना शुरू करता है, और जो भीड़ उसे मारने आई थी वो अचानक बिल्कुल शांत हो जाती है।
अब ये भाषा का बदलाव और एक्सेंट कोई अचानक व चमत्कार नहीं था, बल्कि उसकी बेहतरीन शिक्षा का नतीजा था। स्रोत ध्यान दिलाता है कि पॉल बहुभाषी या बायलिंगुअल कैसे बना।
हाँ, ये जानना बहुत दिलचस्प है।
पॉल का जन्म तार्सिस में हुआ था, जो उस वक्त एथेंस और अलेक्जेंड्रिया जैसी एक बड़ी यूनिवर्सिटी सिटी मानी जाती थी। वहां उसने ग्रीक और उसकी विशिष्ट शैली सीखी, लेकिन उसकी परवरिश और आगे की पढ़ाई जेरुसलम में हुई थी,
और वो भी गामालियल की निगरानी में ना?
बिल्कुल। उस वक्त के सबसे प्रसिद्ध और आदरणीय विद्वान गामालियल के पैरों तले उसने शिक्षा ली। इस शिक्षा ने उसे दोनों दुनियाओं यानी हेलेनिस्टिक और स्थानीय यहूदी संस्कृति दोनों से जुड़े रहने के काबिल बनाया था।
दोनों पर उसकी पकड़ अच्छी थी।
हाँ, तो जब वो अरामिक बोलता है तो भीड़ को लगता है कि ये तो हमारा ही आदमी है, इसकी बात सुननी चाहिए।
अरामाइक सुनकर भीड़ शांत तो हो जाती है और पॉल अपना पक्ष पूरी तैयारी के साथ रखता है, लेकिन उसके लंबे भाषण के दौरान सिर्फ एक शब्द, बिना किसी हथियार के, सिर्फ एक शब्द वापस वैसी ही आग लगा देता है जिससे बुझाने में उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी।
और वो शब्द था जेंटाइल्स, यानी गैर यहूदी।
बिल्कुल। स्टोत दर्शाता है कि उस एक शब्द का कितना भयंकर विस्फोटक असर था। जब पॉल कहता है कि ईश्वर ने उसे जेंटाइल्स के पास जाने का और उन्हें बराबरी का दर्जा देने का आदेश दिया है, तो भीड़ का दिमाग फिर से घूम जाता है।
वो वापस पागल हो जाते हैं, अपने कपड़े फाड़ने लगते हैं और हवा में धूल उड़ाने लगते हैं।
ये कपड़े फाड़ना और धूल उड़ाना क्या था?
प्राचीन काल में कपड़े फाड़ना और धूल उड़ाना असहमति और दुख जताने का सबसे बड़ा प्रतीक था। उन्हें लगता था कि उनके पवित्र ईश्वर के संदेश उन लोगों को दिया जा रहा है जो उन्हें सालों से दबा रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे।
माहौल फिर से अचानक आउट ऑफ कंट्रोल होता देख रोमन सैनिक पॉल को पूछताछ के लिए किले के अंदर ले जाते हैं।
और किले के अंदर जाते ही रोमन्स अपना वही आम तरीका अपनाते हैं जिसे कोअर्सिटियो कहा जाता था।
कोअर्सिटियो यानी पीट पीट कर सच उगलवाना।
एग्जैक्टली। वो पॉल को बांधकर उस पर कोड़े चलाने की तैयारी करते हैं ताकि वो बता सके कि भीड़ आखिर उससे इतनी नफरत क्यों करती है।
तभी पॉल अपना सबसे बड़ा और आखिरी कानूनी पत्ता या ट्रंप कार्ड खेलता है। वो कहता है कि मैं एक रोमन नागरिक हूं, पर रुकिए, यहां एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है मेरे दिमाग में।
क्या सवाल?
अगर उसके पास रोमन सिटीजनशिप जैसा इतना बड़ा और ताकतवर बचाव शुरुआत से ही मौजूद था, तो उसने आखिरी वक्त तक इंतजार क्यों किया? जब भेड़ उस पर हमला कर रही थी या जब ट्रिब्यून ने उसे बेड़ियों में बांधा, तब उसने इसका जिक्र क्यों नहीं किया?
वैलिड क्वेश्चन है।
क्या वो किसी फिल्म के हीरो की तरह जानबूझकर मार खाने का इंतजार कर रहा था?
ये एक बहुत ही जरूरी और डीपली एनालिटिकल पॉइंट है स्रोत में। पॉल ने जानबूझकर मार खाने का इंतजार नहीं किया, बल्कि उसने स्थिति को पढ़ा था। स्रोत के मुताबिक पॉल का मुख्य मकसद अपने लोगों को यानी उस भीड़ को अपना संदेश देना था।
अच्छा।
अगर वो शुरुआत में ही अपनी रोमन सिटीजनशिप का जिक्र कर देता तो भीड़ उसे पूरी तरह आउटसाइडर या रोम का समर्थक मान लेती।
ओ, तो उसकी बात कोई नहीं सुनता फिर।
हाँ, और उसके आराम एक बोलने का कोई असर नहीं होता उन पर। उसने पहले संवाद को चुना, पर जब संवाद नाकाम हो गया और उस पर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के यानी विदाउट अ ट्रायल कोजिशन या टॉर्चर का इस्तेमाल होने लगा, तब उसने अपनी नागरिकता का हवाला दिया
ताकि टॉर्चर से बच सके।
ऑफ कोर्स, रोमन कानून के तहत किसी रोमन सिटीजन को बिना ट्रायल के बांधना या पीटना एक बहुत संगीन अपराध था। इस अपराध के लिए खुद ट्रिब्यून को मौत की सजा हो सकती थी।
बाप रे।
और इस सिटीजनशिप में भी एक बड़ा फर्क था ना, जो स्रोतों में बताता है।
हाँ, क्या फर्क?
ट्रिब्यून क्लॉडियस लेसियास ने अपनी नागरिकता एक भारी रिश्वत देकर खरीदी थी। उस जमाने में करप्शन इतना बढ़ गया था कि पैसों से सिटीजनशिप मिलने लगी थी, जबकि पॉल जन्म से ही रोमन नागरिक था।
सही बताया आपने।
जन्म से नागरिक होने का रुतबा खरीदी गई नागरिकता से कहीं ज्यादा बड़ा था। जैसे ही ट्रिब्यून को यह पता चलता है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है।
वो तो डर गया होगा।
हाँ, वो डर जाता है और तुरंत मारपीट रोककर सनहेद्रिन यानी स्थानीय कानूनी सभा को बुलाता है ताकि मामले को ऑफिशियली हैंडल किया जा सका। स्रोत के मुताबिक इस पूरी घटना को लुकान लेखक ने
यानी एक्ट्स के लेखक ने इतने विस्तार से इसलिए लिखा था जिसे अपोलोजेटिक वैल्यू कहा गया है।
अपोलोजेटिक वैल्यू मतलब
अपनी बात का बचाव करना,
हाँ,
ताकि पढ़ने वालों को ये साबित हो सके कि पॉल पर जो आरोप लगे थे वो कानूनी या आपराधिक नहीं थे। रोमन प्रशासन को उसके खिलाफ कानून तोड़ने का एक भी सबूत नहीं मिला था। उसका मामला पूरी तरह से राजनीतिक और धार्मिक था।
इन सबको एक साथ देखा जाए तो ये चर्चा एक बात तो बहुत साफ कर देती है, ये घटना किसी प्राचीन यात्रा का सिर्फ एक पन्ना नहीं है। ये इस बात का सटीक उदाहरण है कि जब अफवाहों की आंधी आती है तो वो किसी की भी जान ले सकती है।
बिल्कुल,
ये इस बात की मिसाल है कि जातीय आधार पर बनी जो डिवाइडिंग वॉल्स ऑफ हॉस्टिलिटी हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश करने पर कितना विरोध झेलना पड़ता है। और सबसे बड़ा सबक शायद ये है कि भारी विरोध और गलतफहमियों के दौरान भी अपने मुख्य मकसद पर डटे रहना और एक तार्किक शांत स्वभाव रखकर अपने अधिकारों का सही वक्त पर इस्तेमाल करना कितना महत्वपूर्ण है।
इसमें कोई शक नहीं है, पॉल की इस यात्रा ने दिखाया कि जब भारी डर और खतरा सामने हो तब भी अपनी समझ, भाषा और दुश्मनों के बीच ब्रिज बनाने की कोशिश को छोड़ना नहीं चाहिए।
हाँ, वही सबसे बड़ा टेक अवे है।
प्राचीन समाज में भीड़ जिस तरह से थोड़ी सी गलत जानकारी के आधार पर भड़की थी, और आज के आधुनिक समाज में जिस तेजी से बिना फैक्ट चेक किए खबरें फैलती हैं, उन दोनों में हैरानतंगेज रूप से कोई बड़ा फर्क नहीं दिखता। मानव स्वभाव आज भी वैसा ही है।
ये तो है। इस पूरी चर्चा से निकलते हुए एक बहुत बड़ा सवाल हवा में तैरता हुआ महसूस होता है। आज के आधुनिक समाज में हमने ऐसी कितनी भेदभाव की दीवारें सिर्फ थोड़ी सी अधूरी जानकारी और अफवाहों के आधार पर खड़ी कर ली हैं। और अगर एक समाज के रूप में हमें उन मजबूत दीवारों को गिराना हो तो इसकी शुरुआत आपस में किस तरह का संवाद करके करनी होगी।
ये सोचने वाली बात है सच में।
सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर उन्हें अपनी शांति में बैठकर विचार जरूर करना चाहिए। आज की ये गहरी छानबीन यहीं समाप्त होती है।